اور کافروں کی تھی. وإيفاء الوعد لمسلم كان أو كافر, وعدے کا پورا کرنا, وعدہ چاہے آپ یہ جو ہے مسلمان سے کریں چاہے کافر سے کریں. یہ اخلاقیات ہیں اسلام کی, یہ محاسن اخلاق ہیں اسلام کی. والموفون بعهدهم, اس کے بعد والصابرین فی البعصاء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. صبر کریں, ثابت قدم رہے, تب ثابت قدم رہے. مشکل وقت میں نقصان کے مقامات پر ثابت قدم رہے. فلاں کام اسلام میں حرام ہے, اگر نہ کریں گے تو بڑا نقصان ہوگا ہمارا. یہ موقع ہے نا, بزنس کریں گے ہی نہیں, کاروبار کریں گے نہیں, تو صبر کرنے کی کیا بات ہے وہاں پر. وصابرین فی الباساء والضراء وحین البعث, میدان میں ڈٹے رہیں, ثابت قدم رہیں, حوصلے نہ ہارے, ہمت نہ ہارے, میدان نہ چھوڑے. کب؟ مشکل وقت میں, نقصان کے وقت میں, وحین البعث اور جنگ کے زمانے میں. جس وقت جنگ ہو رہی ہے, اگر تقوی کا نام صرف یہ جو ہے مسلح پر بیٹھنا تھا تو ان کو جنگ سے کیا واسطہ, نہیں جنگ میں جانا ہے. بہت سارے مقامات ہیں جہاں پہ جنگ میں جانے کی ضرورت ہے. وحین البعث وہاں ڈٹے رہیں جس میں یہ ساری کوالٹی پائی جائے. خدا پر ایمان, قیامت پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتاب پر ایمان, نبیوں پر ایمان, مال کو خرچ کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں, خاندان والوں کے لیے, یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے, سائلین کے لیے, آزادی کے لیے لوگوں کی, نماز قائم کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, وعدوں کے پابند ہیں, اور مشکل وقت میں جنگ کے میدان کے اوپر سیسا پلائے ہوئے دیوار کی طرح ڈٹے رہتے ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اصلی متقی یہ افراد کہلانے کے قابل ہیں. تقوی فقط تسبیح پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, تقوی فقط نمازیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, تقوی صرف روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے, تقوی صرف تلاوت قرآن کا نام نہیں ہے. رب تار القرآن والقرآن یلعنو, کسی نہیں ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے. کون لوگ ہیں جنہوں نے روح قرآن کو نہیں سمجھا, روح دین کو نہیں سمجھا. آیتیں ہیں جس کو جو ہے وہ دہرائے جا رہے ہیں, آیتوں کو دہرائے جا رہے ہیں. سماج میں جو ہے غربت کیوں آتی ہے؟ غربت کا سبب کیا ہوتا ہے؟ چند چیزیں ہیں غربت کا سبب. ایک جو جہالت, جاہل ہے, اس کو طریقہ نہیں معلوم. کل زمین سے جتنی پیداوار ہوتی تھی آج پیداوار اتنی ہی ہوتی ہے؟ آج بڑھ گئی نا پیداوار, کل پیداوار کم ہونے کی وجہ سے. ہم بچپن میں اپنے ہندوستان میں تھے تو ہندوستان جتنا بڑا تھا اتنا ہی بڑا ہے, بڑا تو ہوا نہیں نا کہ کچھ اور یہ جو ہے بڑا ہو جائے. آج سے 40-45 سال پہلے کی آبادی جو تھی اب ڈبل ہو گئی آبادی. 40-45 سال پہلے آبادی کم تھی اور زمین اتنی ہی تھی. عالم کیا تھا؟ ہندوستان کی پیداوار ہندوستان کے باشندوں کے لیے کافی نہیں تھی, یہاں سے گیہوں جاتا تھا. البتہ یہاں سے گیہوں کے ساتھ بہت کچھ گیا تھا, گیہوں یہاں سے جاتا تھا. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے تھے, راشن کی دکان پہ گیہوں ملتا تھا, بچوں کو جو ہے لائن میں لگا دیا تھا, صبح لگتے تھے, شام کو 5 کلو گیہوں ملتا تھا, شام کو جا کر کے 5 کلو گیہوں ملتا تھا. آج آبادی یہ جو ہے ڈبل ہو گئی, زمین اتنی ہی ہے. آج ہندوستان نہ صرف یہ کہ اپنی یہ جو ہے تمام ضروریات کو خود پورا کر لے رہا ہے, باہر بھی بھیج رہا ہے, ایکسپورٹ کر رہا ہے. کیوں؟ علم کی بنا پڑ رہا. پہلے لا علمی تھی, جتنا گیہوں پیدا آج کر لیتے ہیں, جتنا چاول آج پیدا کر لیتے ہیں, اتنا پہلے پیدا نہیں کر پاتے تھے. اس لیے کہ وہ سادہ کھیتی ہوتی تھی, کسانوں کو اتنا علم نہیں تھا. تو غربت کا ایک سبب کیا ہے؟ جہالت ہے. غربت کا دوسرا سبب کاہلی. علم تو ہے مگر کام نہیں کرتے. غربت کا تیسرا سبب ہے ظلم. कमाई तो हो रही है, इलम तो है, मेहनत तो करते हैं, मगर मेहनत कोई और करता है, समरा कोई और ले जाता है। गुर्बत के तीन ही असबाब हैं, कोई चौथा कलम नहीं है। या जहालत, या काहली, या जुल्म। जब इंसान तकवे से आरास्ता होगा, मुत्तकी ना जाहिल होगा, मुत्तकी ना काहिल होगा, मुत्तकी ना जुल्म करेगा ना जुल्म को सहेगा। जिस तरह से जुल्म करना हराम, जुल्म का सहना भी हराम। ये नहीं कि सिर्फ अपने ऊपर जुल्म को सहना, अगर आप कहीं देख रहे हैं किसी पर जुल्म हो रहा है तो वहां भी आप खामोश नहीं हो सकते। मौला कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातो व सलाम जब दुनिया से जा रहे थे, रुख्सत होते वक्त दुनिया से मौला ने ये जो वसीयतें जो की हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, बज़ाहिर इनसे वसीयत है लेकिन असल में हमसे वसीयत है। फरमाते हैं दोनों का खिताब करके, इअमला लिलहक, देखो बच्चो हमेशा तुम्हारा अमल हक के लिए होना चाहिए। हर कदम से पहले, हर एकदम से पहले देखो ये हक के मुताबिक है या नहीं। तुम्हें क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा ये बात की बात है। सबसे पहले ये देखो कि ये हक के लिए है या बातिल के लिए, इससे हक को फायदा पहुंचता है या बातिल को फायदा पहुंचता है। अगर हक के लिए फायदा है तो अमल करो तुम उसे, चाहे तुम्हें नुकसान ही क्यों ना हो। इअमलू लिलहक, कूला लिलहक, जबान से जो लफ्ज निकालो हक के लिए वो इअमलू लिलअज्र, और अमल जो करते हो ऐसा अमल हो जिस पर अल्लाह तुम्हें अज्र दे सके, सवाब दे सके। कूना लिज़्ज़ालिम ख़स्मा वलिल्मज़लूम औना, और देखो अपनी जिंदगी में हमेशा जालिमों के मुकाबले में रहो, जालिमों से टक्कर लेते रहो और मजलूमों की हमेशा हिमायत करते रहो। ये आखिरी वसीयतें हैं मौला की। जुल्म के मुकाबले में न जो है हमारे यहां जो है किसी के ऊपर जुल्म करने की इजाजत है, न जुल्म सहने की इजाजत है, न दूसरों पर जुल्म होता देख करके खामोश रहने की इजाजत है। कुरान मजीद जब ये जो है वो सरजनिश करता है, मा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़फीना मिनर रिजाल वन निसाए वल बिल्दान अल्लज़ीना यकूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिम अहलुहा, ये मुसलमानों तुम्हारी गैरत को हो क्या गया है, तुम्हें हो क्या गया है, तुम मजलूमों की आवाजों को सुन रहे हो। मा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तुम निकलते क्यों नहीं हो, तुम जंग क्यों नहीं करते हो, जिहाद क्यों नहीं करते हो, उन मजलूम औरतों बच्चों बूढ़ों को जुल्म की चक्की से ये जो है नजात दिलाने के लिए जो फरियाद कर रहे हैं कि पालने वाले हमें जालिम बस्ती से नजात दिला। ये कुरान है, जो कुरान की आयतें हैं, जो कुछ पेश कर रहा हूं अपना कुछ नहीं है, या मासूम की हदीस है या कुरान की आयतें हैं। तो इस्लाम न जुल्म करने की इजाजत देता है, न जुल्म सहने की इजाजत देता है, न इस्लाम जहालत की इजाजत देता है। इस्लाम में इल्म का हासिल करना वाजिब है। हर वो इल्म जो इंसानियत की फलाह हो बहबूद के लिए खुदा की खुशनूदी के लिए हासिल किया जाए वो इल्म इल्म दीन है। मैं उस तकसीम का कायल नहीं हूं जो इल्म दीन और दुनिया कर दी जाती है कि वो जी वो फिक्र हदीस जो है वो इल्म दीन है और ये जो है बकिया जो तालीमात है साइंस और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक कोई इल्म ये है दुनिया है। इल्म दीन इल्म दुनिया है, मगर ये तकसीम गलत है। हर वो इल्म इल्म दीन है जो इंसानियत के फायदे के लिए हो और अल्लाह की खुशनूदी के लिए हो। हर वो इल्म इल्म दुनिया है जो ये जो है नफ्स के लिए हो, अपनी बर्तरी साबित करने के लिए हो, दौलत कमाने के लिए हो, दूसरों को अपना गुलाम बनाने के लिए। पैगंबर इस्लाम की हदीस है कि जो इल्म हासिल करना चाह रहा है दूसरों पर अपनी ये जो है बर्तरी हासिल करने के लिए, दौलत इकट्ठा करने के लिए, फल यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम में ढूंढ ले। मैं अगर इल्म कुरान हासिल करता हूं, इल्म हदीस हासिल करता हूं काहे के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो यही इल्म है कुरान, यही इल्म है फिक्र, यही इल्म है हदीस, इल्म है दुनिया, इल्म दीन नहीं है। एक शख्स जो है वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, काहे के लिए? साइंसदान बनता है। काहे के लिए साइंसदान बन रहा है? ताकि इस्लामी माशरे को कुफार के तसल्लुत से आजादी दे। ये इल्म दीन है। मकसद क्या है इस चीज का? तो ये जो गुर्बत की तीन चीजें, तीन बुनियादें, नंबर एक जहालत, इस्लाम जहालत का मुखालिफ है। इल्म का हासिल करना वाजिब है। दर्ज किया मैंने सिर्फ वाजिब इल्म हासिल में, इल्म फिक्र हो, इल्म कुरान हो, इल्म हदीस, जो हम लोगों ने हासिल किया वही नहीं है। इल्म तिब हासिल करना वाजिब है। बता वाजिब किफाई, ये सारे उलूम वाजिब किफाई हैं। कुछ वाजिब ऐनी होते, कुछ वाजिब किफाई। वाजिब ऐनी तो हर शख्स पर वाजिब है, हर शख्स को अंजाम देना। वाजिब किफाई वो वाजिब तो हर शख्स पर है, लेकिन अगर बकदर जरूरत काम अंजाम पा जाए तो बकिया माफ, और अगर बकदर जरूरत अंजाम ना पाया तो सब गुनहगार। किसी का इंतकाल हो गया, उसको दफन करना, गुस्ल देना, कफन पहनाना, सब पर वाजिब है। मगर वाजिब किफाई, अगर चार आदमी चले गए, उन्होंने उसको गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, दफन कर दिया, बकिया माफ, लेकिन अगर कोई ना गया तो सब गुनहगार। तो हर इल्म का, हर वो इल्म जो इंसानियत के लिए जरूरी है और खुदा की खुशनूदी के लिए हासिल किया जाए, ये इल्म वाजिब है, वाजिब किफाई है। एक मुत्तकी जाहिल तो नहीं होगा ना? एक मुत्तकी समाज जाहिल समाज होगा? मुत्तकी समाज आलिम समाज हो। तुम कौन है मुत्तकी जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले? अल्लाह के बताए हुए रास्ते में कहम रास्ता इल्म है। दूसरा सबब है काहिली। इस्लाम ने काहिली को पसंद नहीं किया है। हदीस है, खुदा की लानत है उस शख्स के ऊपर जो अपना बोझ दूसरों पर डाल दिया। हम बैठे नमाज पढ़ेंगे, आप कमाएंगे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक साहब गए थे हज करने के लिए। हज करके पलट, आमतौर से रस्म है ना कि हाजी आते हैं तो हज की कहानियां सुनाते ही, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। इमाम के पास हाजी आया हुआ है और आने के बाद कहने लगा, क़िबला हम हज करने गया था। एक तो बड़ा अजीब हाजी मिला, क्या कहना उसकी इबादत का साहब, क्या कहना उसकी इबादत का। सुबह शाम मसरूफ इबादत, या तवाफ है, या तिलावत कुरान है, या दुआ है, या मुनाजात है, इसके अलावा कुछ काम ही उसको नहीं था। मौला ने पूछा, तो खाना कैसे खाता था? 24 घंटा आदमी इबादत ही में लगा है, तो खाना कैसे खाता था? खाना लाएगा, पकाएगा। होटल उस जमाने में ना होते थे, वो होटल लेके कम से कम जाना तो पड़ेगा हर वक्त वहीं पर। क्या हुजूर वो हम जैसे गुनहगार काम कर दिया करते थे उनका? हम लोग उनका जो है बर्तन धो देते थे, हम लोग उनका खाना पका देते थे, सारे काम हम कर देते थे। इमाम ने फरमाया, तुम्हारा सवाब उनसे ज्यादा है। इस्लाम का तकवा कोई यह गैर मंतिकी तकवा नहीं है, बड़ा मंतिकी तकवा है। तो काहिली भी मना। अब तीसरा मसला है जुल्म, जो आमतौर से होता है। बहुत सारे ममालिक आज जो गरीब है, जहां गुर्बत पाई जा रही है, जहां फकर व फाका है। क्यों फकर व फाका है? दौलत के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी दौलत कहीं और जा रही है, अय्याशियां कहीं और हो रही हैं, गुर्बत का शिकार वो है। अगर ये जुल्म ना होता तो भला उनके यहां ये जो है भुखमरी होती? या उनके यहां जहालत पाई जा रही है, या काहिली पाई जा रही है, या जुल्म है। तीन चीजें तीनों इस्लाम के अंदर मना है, न जुल्म करना, न जुल्म सहना, न दूसरों पर जुल्म होते देखना। अगर ऐसा तकवा इख्तियार कर लिया, कुरान जो कहता है सुनिए फिर से, बोलो अन्ना अहलल करिया आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज। अगर ये बस्ती वाले ईमान लाते और ये वाला तकवा अख्तियार करते, तो हम उनके ऊपर एक बरकतों को उंडेल देते, जमीन और आसमान से बरकतें उनको उंडेल देते। तो तकवे का फायदा सिर्फ आखिरत में नहीं है, तकवे का फायदा ये है दुनिया में भी है। एक मसला पेट का अर्ज कर दे, दूसरा टुकड़ा रह गया जो हमारी जरूरत है, सेहत। तकवे से सेहत भी है, क्योंकि वक्त हो चुका है, लेकिन अब तो आखिरी मजलिस है ना, अब कल तो नहीं कि मैं कल बयान कर दूंगा। दादा चंद मिनट आपसे इजाफा, गुर्बत तो हल हो गई, पेट का मसला हल हो गया, सेहत को क्या करेंगे? तकवा अगर आएगा तो सेहत भी आएगी। बीमारी दो तरह की है, जिस्म की बीमारी और ये जो है नफ्सियात की बीमारी। दो तरह के लोग होते हैं ना, बुखार है, नजला है, जुकाम है, कैंसर है, फना है, टिका है, और कुछ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल फिट है, डॉक्टर साहब के पेशेंट। ये जो नफ्सियात की बीमार, दो बीमारियां तो है ना, जिस्मानी बीमारियों के अक्सर बीमारियों का सरचश्मा ये पेट है। अक्सर बीमारियों का सरचश्मा क्या है? ये पेट है। हार्ट की बीमारी कहां से आती है? अक्सर बीमारियां तो यहीं से आती है ना, पेट से आती है। खूब चिकना खाया, खूब मुरकम के दर्द खाए, खाई, डॉक्टर खुश। खाना हो रहा है वो देख रहे, आएगा हमारे पास जाएगा तो। अक्सर बीमारियों का मरकज पेट है। कोई ऐसा काम इस्लाम में करना जायज नहीं है जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाए। ला ज़रारा वला ज़िरारा फिल इस्लाम, हर वो अमल हराम है जिससे हमें नुकसान पहुंचे या हम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। ना अपने को नुकसान पहुंचाना जायज है, ना दूसरे को नुकसान पहुंचाना जायज है, क्योंकि ये बदन हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, अल्लाह की अमानत है। अगर कोई मरता है तो हम क्या कहते हैं? तो खबर मिलती है फला साहब मर गए तो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाह। कभी सोचा ये है क्या इन्ना लिल्लाह? इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह की प्रॉपर्टी हैं। लिल्लाह का माना लाम जाता है यहां पर काहे के लिए, प्रॉपर्टी का माना देता है मिल्कियत। हम अल्लाह के लिए हैं, यानी हम अल्लाह की प्रॉपर्टी हैं, हम अल्लाह की मिल्कियत है। वइन्ना इलैहि राजिऊन, और एक दिन ये प्रॉपर्टी उसके हुजूर में पेश करना, हैंड ओवर करना है। ये हमारा कुछ नहीं है, ये सब कुछ अल्लाह की मिल्कियत है। हम अपने जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे, आपसे मतलब आपके जिस्म कहां से लाए हो भाई? चीज के भाई मिल्कियत तो तीन तरह से होती है ना, या बनाया है, या खरीदा है, या किसी ने गिफ्ट दिया है आपको, मीराश में मिला है। खरीदा कहां से खरीदा? एक और खरीद लाओ। मीराश में मिला, उनके पास खुद कुछ नहीं, वो हमें कहां से देंगे? खरीदा, बनाया, ना बनाया, ना खरीदा, ना मीराश में मिला, ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की अता है, जिस्म उसका है, हमारे पास बतौर अमानत है। अमानत में खयानत जायज नहीं है, हत्ता काफिर की अमानत में खयानत तो अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है। और अगर ये समझ के जिस्म की खिदमत करेंगे ना, तो अहले इबादत हो जाएगा। खाना भी खाएंगे इबादत भी होगी, कपड़ा भी पहनेंगे इबादत भी होगी, मकान भी बनाएंगे। मकान किस लिए बना रहे? ताकि अल्लाह की अमानत सर्दी से गर्मी से महफूज रह जाए। खाना किस लिए खा रहे हैं? ताकि ये अल्लाह की अमानत जो है इसमें नुकसान ना आने पाए। तो जाहिर से बात वही खाना भी जायज होगा ना जो सेहत के लिए मुफीद है। हर वो खाना, हर वो चीज जिसके बारे में अलबत्ता यकीन हो जाए कि नुकसानदेह है। अब यकीन ही ना हो किसी को तो क्या कर सकते? कहता कि जो सिगरेट नुकसानदेह है, बकते हैं डॉक्टर, बेकार की बातें करते, कोई नुकसानदेह नुकसानदेह नहीं है। अगर यकीन हो जाए तो सिगरेट हराम है पीना। जिन फुकहा को यकीन हो गया है, उन्होंने हुरमत का फतवा दिया, आयतुल्लाह नासिर मकारी शेख पूरी किताब लिखी है उन्होंने इसके ऊपर, उम्मुल खबाइस करार दिया है सिगरेट को। अब उन्हें यकीन हो गया, हमें नहीं मालूम है किसको किसको यकीन है, किसको यकीन नहीं है, ये तो आपके अपने अख्तियार पर है। आप अगर यकीन ना करें कि डॉक्टर सारे बकते हैं, दिव्या पर लिखा है वो सब बेकार है, बकवास है, ठीक है, लेकिन जो जो चीजें मुहिर हैं बदन इंसान के लिए, खाना खाओ मगर ये देख करके खाओ, क्या खा रहे, पेट में क्या डाल रहे हो, दोनों गजा के बारे में ख्याल रखना, रूहानी गजा के बारे में भी और जिस्मानी गजा के बारे में। ना जिस्मानी गजा खा, क्योंकि ये जो है फूड पॉइजनिंग सिर्फ जो है जिस्मानी गजा में नहीं होती, रूहानी गजा में भी होती है। रूहानी गजा में भी जो है फूड पॉइजनिंग है, जिस्मानी गजा में किसी हद तक लोग ख्याल रख लेते हैं, खासतौर से अपने अपने बारे में चाहे ना रखें, मगर अपनी औलाद के बारे में तो पूरे चौकन्ना रहते हैं। बेटा ये ना खाना, वो ना खाना, वो ना खाना, फ्रिज में वो तीन दिन का रखा है मत खाना, वो तबर्रुक फला के यहां से लाए थे, बहुत रखा, शायद खराब हो गया, शायद, यकीन नहीं है, शायद यकीन नहीं, मटा नहीं खाना, अच्छी बात है, एहतियात करना चाहिए, क्यों? ताकि जिस्म जो है नुकसान ना पहुंचे इसे। लेकिन जब गजाए रूह की बारी आती है जिस्म की गजा जो है मुंह से जाती है और रूह की गजा इससे और इससे जाती है, आंख और कान। जिस्म के लिए दहन और रूह की गजा कुछ आंखों के जरिए कुछ कान के जरिए कुछ इदराकात के जरिए, ये दो तो है ना। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, या सुनते हैं या देखते हैं, पढ़ते हैं वो भी आ गया देखने में आ गया, क्या पढ़ा क्या देखा, ये है रूह की गजा। अरे वालदैन जितना ख्याल अपने बच्चों की जिस्मानी गजा का रखते हैं, एकाश थोड़ा सा ख्याल रूहानी गजा का भी रखते हैं। बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चे क्या सुन रहे हैं, नहीं नहीं किसी की आजादी में खलल ले जाना चाहिए। अब बच्चे क्या देख रहे हैं देखने दो उनको, इंटरनेट पर बच्चों को आजादी है, हर कोई आजाद है अपने अपने तौर पर, जो बच्चे चाहें देखें जो बच्चे चाहें सुने। ये आजादी का तस्वुर खाने पे क्यों नहीं आता है, जिस्मानी गजा पर? बच्चों को खाने को जो खाते, जो आइसक्रीम उन्हें पसंद आ गई खाने दो, जो खाना उन्हें, नहीं क्यामत हो जाती घर के अंदर, सारी आजादी भूल जाते कि इंसान आजाद है, किसी की आजादी में जो है रखना नहीं डालना चाहिए। जबकि जिस्मानी नुकसान का दायरा महदूद है, रूहानी नुकसान का जिस्मानी, अगर हमने गलत खाना खा लिया तो हम मर जाएंगे और हमारे साथ पूरा महल्ला तो नहीं ना जो है मरेगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मसमूम गजा रूहानी किसी को पहुंच गई, खुद भी फासिद होगा पूरे माशरे को फासिद करेगा। आज अगर हमारी फिक्र फासिद हो जाए, हम खुद फासिद होंगे, आपके अफकार के बिगड़ फासिद करेंगे। तो रूहानी गजा पे ज्यादा तवज्जो है। पहला, इस्लाम के अंदर ला जरारा वला जरारा फिल इस्लाम, कोई ऐसी चीज खाने की इजाजत ही नहीं है। अक्सर बीमारी तो हल हो गई, उसके बाद ये जो है नफसियाती बीमारी, नफसियाती वो बीमारी क्यों आती है, टेंशन, तन्हाई का एहसास। अक्सर बीमारियों की जड़ ये होती है कि एक इंसान को तन्हाई का एहसास हो, कोई नहीं हमारा, फला के साथ ये किया उन्होंने धोखा दिया, फला के साथ वो किया उन्होंने देखा, बीवी ने ये कर दिया और बहन ने ये कर दिया, भाई ने ये कर दिया, पार्टनर ने ये कर दिया, कारोबार में धोखा हो गया, यही सब तो है ना। वजूहात जो है बीमारियों के क्या होते हैं, यही सारे वजूहात हैं। कभी तन्हाई का एहसास, एक मुत्तकी को कभी तन्हाई का एहसास नहीं होता, एक मुत्तकी को कभी, हमेशा इसको एहसास है कि कोई ना हो खुदा तो हमारे साथ है। जब ये एहसास हो जाता खुदा है, जहां खुदा की याद आई वहां से अल्लाहु ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद खुदा से दिलों को सुकून मिल जाता है। जहां याद खुदा होगी, जहां तकवा होगा, वहां पर कभी भी नफसियाती बीमारी नहीं होगी। एक मुत्तकी कभी खुदकुशी नहीं करेगा, क्योंकि उसको खसारे का एहसास ही नहीं है। कहे क्या खसारा, कारोबार में घाटा हो गया तो क्या हम यहां दौलत कमाने आए थे, असल कारोबार तो हमारा वहां का है, वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस खसारे को भरना जरा मुश्किल होता है, मगर वो खसारा तो बड़ा आसान है। अगर जरा एहसास हो गया कि वहां के अकाउंट में कुछ कमी आ रही है, कुछ गुनाह है, फौरन इस्तगफार किया, तौबा किया, सारी कमियां दूर हो गई। तो तकवे का फायदा वहां भी है, तकवे का फायदा यहां भी है, आखिरत में भी फायदा है, दुनिया में भी फायदा है, गुर्बत भी दूर, बीमारियां भी दूर, नफसियाती बीमारियां खास तौर से दूर। कितनी ही मुसीबतें पड़ जाएं, जो तकवे से आरास्ता है उनका कभी इस्तराब नहीं होता। करबला की दास्तान पढ़ते हैं, जितनी मुसीबतें करबला में हैं उसे हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अजीब है, जब मुसीबत किसी पर पड़ती है तो दो तीन तरह के लोग होते हैं, कुछ चीखने लगते हैं, कुछ चिल्लाने लगते हैं, कुछ जो होते हैं साबिर होते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, न चीखते हैं न चिल्लाते हैं, हत्ता उनकी आंख से आंसू भी नहीं निकलता, इतना जब्त कर लेते हैं अपने को, लेकिन चेहरा चुगली खाने लगता है, चेहरे का रंग तो बदल जाता है। मुसीबत अदा का चेहरा गवाही देता है मुसीबत सदा। अक्सर लोगों को देखा, भाई क्या बात है शरीयत, तो आपके चेहरे का रंग बदला हुआ है, वो इख्तियार में नहीं होता। जब ये जो है मुसीबत पड़ती है, जब मुसीबत का एहसास होता है इंसान को, तो कम से कम चेहरे का रंग बदल जाता है, चेहरे का रंग स्याह पड़ने लगता है। अल्लाहु अकबर। मगर करबला में मुसीबतों का पहाड़ टूट गया हुसैन का, लेकिन मक्तल के जुमले हैं कि जैसे जैसे हुसैन की मुसीबतें बढ़ती जाती थी वैसे वैसे हुसैन का चेहरा खिलता जाता था, चेहरे की रौनक बढ़ती जाती है। हबीब इब्ने मज़ाहिर की शहादत कोई मामूली शहादत नहीं थी हुसैन के लिए। हबीब शहीद हुए, हुसैन का चेहरा खिल उठा। और न मोहम्मद की मुसीबत कोई मामूली मुसीबत नहीं थी। किस दिल से हुसैन ने उन मोहम्मद का जनाजा ला करके जैनब के सामने रखा होगा? बहुत चहेती बहन है ना जैनब, उसके लाडलों का जनाजा ला करके मां के सामने रख देना कोई मामूली बात नहीं थी हुसैन के लिए। हुसैन का चेहरा और खिला जब कासिम की लाश घोड़े की टापों से पामाल हुई। पामाल लाशा बेवा भावच के सामने ला के रखना बहुत बड़ी मंजिल थी हुसैन के लिए। हुसैन का चेहरा और खिला। अब्बास के शाने कलम हुए, हुसैन का चेहरा और खिला। अली अकबर के सीने पर बर्छी लगी, हुसैन का चेहरा और खिला। क्योंकि हुसैन इन मुसीबतों को मुसीबत नहीं समझ रहे थे, ये सब खुदा की निगाहों के सामने, ये सब खुदा के लिए अंजाम पा रहा है। कौन सी मुश्किल घड़ी हुसैन के लिए नहीं आई? यहां तक एक वो घड़ी आ गई है जब हुसैन के हाथों पर नन्हे से शिरखार का जनाजा है। हुसैन कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, खैमे में ले जाना चाहते हैं हुसैन, मगर तरद्दुद है हुसैन को, कैसे मां के सामने जनाजे को लेकर के जाए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे, हुसैन के लबों पर है। क्या बात है, ये छोटा सा जनाजा इतना भारी क्यों हो गया है हुसैन के हाथों पर? इसे खैमे में ले जाने में हुसैन को तरद्दुद क्यों हो रहा है? सुबह से हुसैन जनाजे ही तो उठा रहे थे। और मोहम्मद का जनाजा ले गए, कासिम का जनाजा ले गए, अब्बास का जनाजा न ले गए, अलम तो ले गए, अली अकबर का जनाजा उठ नहीं रहा था तो बनी हाशिम के बच्चों को बुलाया था, बच्चों आओ आओ, बूढ़े बाप से जवान का जनाजा नहीं उठ रहा है, मगर उठा के खैमे में ले तो गए ना हुसैन। इस छोटे से जनाजे में क्या बात थी, कितना भारी जनाजा हो गया था कि हुसैन कभी आगे बढ़ते थे कभी पीछे हटते थे। शायद वजह यह हो, अब तक जितने जनाजे हुसैन खैमे में ले गए थे बीवियों को जनाजा ही आने की उम्मीद थी। जब ओनो मोहम्मद गए थे मैदान में, जैनब को ओनो मोहम्मद के जिंदा पलटने की उम्मीद नहीं थी, जनाजा आने ही की उम्मीद थी। फरवा को कासिम के जनाजे ही का इंतजार था, बीवियों को अली अकबर के जनाजे ही का इंतजार था। लेकिन अजीजो, ये नन्हा मुजाहिद, ये शेरखान जो हुसैन के हाथों पर है, इसे तो मां ने पानी पिलाने के लिए हुसैन को दिया था। अरे माँ को क्या जवाब देंगे, मेरे लाल को पानी पिलाने ले गए थे। अभी तो हुआ भी यही, जब हुसैन हिम्मत जुटा करके अली असगर को लेकर के खैमे में पहुंचे हैं, उधर से सकीना दौड़ी, बाबा क्या मेरा भैया पानी पी करके आ गया, उधर से रबाब आगे बढ़ी, आका क्या मेरा बच्चे ने पानी पी लिया। अरे जब हुसैन ने आबा का दामन हटाया, माँ की निगाह जब छेदे हुए गले में पड़ी, गला छेदा हुआ, मन का ढला हुआ, अरे माँ तड़प गई, एक जुमला फकत रबाब की जबान से निकला, बुनैया मिसलो का तुनहर, ए मेरे लाल, क्या तेरे जैसे बच्चे भी ज़िबह किए जाते हैं। अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिल ज़ालिमीन, फसयअलमु लदीना ज़लमू अय्यमुन क़लबिन यन्क़लिबून। بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اپنی ہم زندگی میں دولت تقویٰ سے ہمیشہ مالا مال، بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ہمیشہ تیرے راستے پر چلتے رہیں، پالنے والے ہمارا انجام بخیر ہو۔ معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے دشمن اگر لائق ہدایت ہے تو ہدایت، و اللہ نیست تو نابود فرما۔ اب وہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, امام زمانہ کے ظہور میں تاجی. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصاره.